मुख्य समाचारों में न्यू साउथ वेल्स में 18 नए मामले, लॉकडाउन का फैसला कल तक के लिए टला। भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने फतेहपुर सीकरी की इमारत की दीवारों, महल और खंभों के आसपास लगाई लकड़ी की रेलिंग। और खेलों में विंबलडन क्वार्टर फाइनल में आमने सामने होंगी ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष टेनिस महिला खिलाड़ी। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लैडिस पेरिजिक्लिन का कहना है कि सिडनी और आसपास के निवासियों को कल बुधवार को पता चलेगा कि क्या उनका लॉकडाउन शुक्रवार के आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। न्यू साउथ वेल्स ने कल रात 8 बजे से 18 नए कोविड नए मामले दर्ज किए, जिसमें से कम 7 लोग अपनी संक्रामक अवधि के कुछ समय तक समुदाय में मौजूद थे। नए मामलों में से 16 एक ज्ञात मामले या क्लस्टर से जुड़े थे, जिनसे पिछले मामलों के 9 घरेलू संपर्क शामिल थे। 2 मामले अभी भी जांच के दायरे में हैं। सुश्री पेरिजिक्लिन का कहना है कि वो समझती हैं कि लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि लॉकडाउन कितने समय तक चलेगा।
I'm keen to provide that certainty to people tomorrow, so that people can make arrangements if they need to moving forward. But what I can say is, based on the health advice, the New South Wales government is very much not only thinking about when we come out of lockdown, but what coming out of lockdown looks like. And then in addition to that, what life looks like until the end of October when we have many more vaccines available.
40 वर्ष से कम आयु के ऑस्ट्रेलियन लोग अब सितंबर की शुरुआत में फाइजर कोरोना वायरस के टीकों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जब रोल आउट में तेजी आएगी। इस आयु वर्ग के अधिकांश लोग वर्तमान में फाइजर के पात्र नहीं हैं, लेकिन एस्ट्राजेनेका जैब प्राप्त करने के बारे में वो अपने जीपी से बात कर सकते हैं। कोविड 19 वैक्सीन टास्क फोर्स के प्रमुख जॉन फ्रीवन से फाइजर को 40 साल से कम उम्र के लोगों के लिए विस्तारित करने के लिए यथार्थवादी समय सीमा के बारे में पूछताछ की गई।
Look, the key limiter at the moment would be availability of the vaccines. So I think right now we will prioritise particularly the Pfizer vaccines to the states and territories in the way we are doing. But certainly from around September, October, when we have greater access to the vaccine.
इस बीच लेबर विपक्षी नेता एंथनी एल्बनीसी का कहना है कि सरकार का वैक्सीन रोल आउट असफल रहा है, खासकर जब वो वृद्ध देखभाल क्षेत्र की बात आती है।
18 months into the pandemic, 18 months into a pandemic in which aged care workers were supposed to be all vaccinated by Easter and aged care residents. This government has gone from being complacent last year in saying we're at the front of the queue for vaccines to actually being incompetent.
क्वींसलैंड ने सामुदायिक संचरित कोविड 19 का एक नया मामला दर्ज किया है, हालांकि प्रीमियर एनेस्थीसिया पैलेशे का कहना है कि अधिकारी इस लिंक की पहचान करने में सक्षम हैं।
This person is connected to the alpha cluster. She is a close contact of the man that we reported yesterday from Cinnamon Park, and she lives at Kangaroo Point, and she's in home quarantine at the moment.
और राज्य की मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेनेट यंग का कहना है कि मामला एक छात्र नर्स का है जो बिना लक्षण के है।
So asymptomatic, which means that we can't identify the start of her infectious period. So we've gone back, so that's the 26th of June. But I think it's unlikely that she was infectious back then, but to be absolutely sure, we've gone back that far. Now, she is a student nurse. We believe she hadn't been on campus since that time.
Dr. Yang ka kehna hai ki is sakaratmak mamle ka 28 जून को एक घंटे के लिए किसी के साथ संपर्क था, हालांकि दोनों ने मास्क पहना था और उस संपर्क ने नकारात्मक परीक्षण किया है। विकलांग लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि क्या राज्य और क्षेत्र उनके सपोर्ट की गणना के तरीकों में बदलाव करते हैं। फेडरल सरकार सभी राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना प्रतिभागियों और नए आवेदकों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन शुरू करना चाहती है। ये परिवर्तन NDIS की वार्षिक लागत के शासित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो कि दशक के अंत तक $60 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। प्रस्तावित परिवर्तनों का लेबर, ग्रीन्स और डिसेबिलिटी कम्युनिटी मेंबर्स द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। तालिबान मध्यस्थ यानी नेगोशिएटर सुहेल शाहीन ने सैन्य बल के बजाय बातचीत के माध्यम से अफगानिस्तान के लिए स्थायी शांति के लिए अपने समूह की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर स्काई से बात करते हुए श्री शाहीन ने कहा कि समूह इस संकल्प पर प्रतिबद्ध है कि अफगान क्षेत्र से अमरीका या उसके सहयोगियों पर किसी भी हमले की अनुमति नहीं होगी।
We have commitment that we will not allow anyone or any entity to use the soil of Afghanistan against the United States, its allies in other countries. It is a negotiated settlement for Afghanistan. I see it, there should be negotiated settlement for the country because only in that case we can have a durable peace. It is our policy. Military approach will bring victory, but not a durable peace.
श्री शाहीन ने कतर से बात की, जहां तालिबान नेताओं ने अफगान सरकार के प्रतिनिधियों के साथ लंबे समय से निलंबित शांति वार्ता फिर से शुरू की है। अप्रैल के मध्य में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा देश के सैनिकों की वापसी की घोषणा के बाद से तालिबान ने क्षेत्रीय अधिकार लिया है। वे अब अफगानिस्तान के सभी 421 जिलों और जिला केंद्रों में से लगभग एक तिहाई को नियंत्रित करते हैं। वाशिंगटन ने बार बार चेतावनी जारी की है कि राजधानी काबुल पर एक सैन्य कदम धार्मिक आंदोलन की स्थिति ले आएगा और फिर इससे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और सहायता से अफगानिस्तान वंचित हो जाएगा। भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने फतेहपुर सीकरी के स्मारक की दीवारों, महल और खंभों को पर्यटकों से दूर रखने के लिए लकड़ी की रेलिंग लगा दी है। जैसा कि विदित है, पर्यटक पंचमहल परिसर में दीवाने खास के बेहतरीन नक्काशीदार खंभों को छूने के साथ ही उससे लगकर फोटो खिंचवाते हैं। इसी तरह का आलम अनूप तालाब, टर्की सुल्ताना महल और दीवाने खास में भी देखने को मिलता है और ऐसे कई और पर्यटक भी होते हैं जो दीवारों को खुरच कर नुकसान पहुंचाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कहना है कि लकड़ी की रेलिंग से स्मारकों की पच्चीकारी के पत्थर सुरक्षित रहेंगे, वहीं आने वाले पर्यटकों का कोरोना वायरस से भी बचाव होगा। और भारतीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए रोजाना 86 से 87 लाख लोगों को वैक्सीन देने की आवश्यकता होगी। इस वर्ष दिसंबर तक 130 करोड़ से अधिक आबादी के कम से कम 60% को टीके की दोनों खुराक लगाने की आवश्यकता है। भारत में आज सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार 34,703 नए COVID-19 केसेस सामने आए हैं और वहां रिकवरी रेट बढ़कर 97.17 हो गया है। देश में कोरोना के मामले भले ही लगातार कम आ रहे हैं, लेकिन अभी भी 77 जिले वहां ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है। और बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 75 सेंट और भारत के 56.24 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में, विंबलडन क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलियन एश बार्टी और लाइला टॉम जोनोविच कल क्वार्टर फाइनल में आमने सामने होंगी। विश्व नंबर एक बार्टी ने बारबरा केचिकोवा को हराकर पहली बार विंबलडन प्रतियोगिता के अंतिम आठ में जगह बनाई और टॉम जोनोविच ब्रिटिश एमा राडुकानू के मेडिकल टाइम आउट से लौटने में विफल होने के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वैसे वो 6-4, 3-0 से आगे चल रही थीं। और इस बीच पुरुषों की दुनिया में नंबर एक नोवाक जोकोविच ने चिली के क्रिश्चियन गारिन को हराया। विंबलडन में अगर एक और जीत मिलती है तो वो रॉजर फेडरर और राफेल नडाल दोनों के बराबर 20 ग्रैंड स्लैम खिताब की कतार में आ जाएंगे। जोकोविच का कहना है कि वो ये सोचकर अपना ध्यान भटकने नहीं देंगे। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी बुधवार को पर्थ में बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 डिग्री। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम 4 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 11 डिग्री, न्यूनतम 2 डिग्री। कैनबरा में सुबह के समय धुंध, आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 11 डिग्री, न्यूनतम -2 डिग्री। सिडनी में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। ब्रिस्बेन में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। और डार्विन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।